नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई तेज। पटना और अररिया में 300 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर जब्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज सहरसा और खगड़िया जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के अंतर्गत बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे।
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हुई, फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़कर 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी उथल पुथल के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद राष्ट्र बना हुआ है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। श्री मोदी ने कहा कि तेल उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है। लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में रसोई गैस की घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और गैस सिलेंडरों की बुकिंग से डिलीवरी की तय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह 2.5 दिन बनी हुई है। श्री पुरी ने कहा कि 35 करोड़ परिवारों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रसोई गैस को लेकर लोगों में घबराहट है और रेस्तरां चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। रेहड़ी पटरी वालों पर भी इसका असर पड़ा है। राज्य सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और कड़ी निगरानी के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न ऊर्जा संकट की स्थिति को देखते हुए विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विकास आयुक्त ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग नहीं होने के संबंध में निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। बिहार झारखंड में इंडियन ऑयल के प्रमुख अनूप कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। आईओसी द्वारा वर्तमान में कुछ तकनीकी समस्या के कारण ओटीपी को स्थगित कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को घबराहट में अनावश्यक सिलेंडर भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिले के सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। गैस एजेंसियों के पास एक दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पटना जिला प्रशासन ने विभिन्न गैस एजेंसियों पर छापेमारी के दौरान बाढ़ से 4 और दानापुर से 132 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं जिले के फुलवारी शरीफ में गैस वितरक के गोदाम की जांच में अनियमितता मिलने पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर जिले में एक गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय के खिलाफ अनियमितता बरतने के आरोप में पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित अंसारी चौक के पास घर और गोदाम से अवैध 250 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा और खगड़िया जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री सहरसा में 512 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं खगड़िया जिले में मुख्यमंत्री 304 करोड़ रुपए की लागत वाली 319 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री दोनों जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम और विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए एनडीए ने अपने विधायकों को 16 मार्च तक पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित एनडीए विधायकों की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में विधायकों को वोट देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
सभी सर्वसम्मत से सब लोगों ने जिस तरह से जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की है और सब लोगों ने अपना अपना राय दी और कैसे जो है एनडीए एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे और पांचों को पांचों सीट एनडीए के झोली में जाएगी, इसके लिए लोगों ने अपना सुझाव दिया। तो महागठबंधन वाले लोग चाहे कुछ भी कर ले, कितनों हाथ पर मार ले, महागठबंधन जितने नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा के पांचों सीट एनडीए के झोली में जाएगी।
हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद थे। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में स्थानीय बाजार में निर्मित सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। पटना में एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि दूसरे प्रदेश में बनी सामग्रियों के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय खोलने की योजना तैयार की जा रही है, इससे बिहार में बने उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण की पात्रता केवल माता पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से अलग मानना भेदभाव है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दावों पर दिल्ली, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को बाहर रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों तक पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि विधानसभा समितियों की कार्यशीलता को देखते हुए विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति के सदस्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि इससे सदन में विमर्श को ज्यादा समय मिल सकेगा। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कल शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री हसनैन प्रदेश के 43वें राज्यपाल होंगे। वे वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव आज नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगी। हालांकि डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भागों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा एवं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
इधर पटना समेत आसपास के जिलों में आज सुबह कुहासे की स्थिति देखी गई। कई स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक समेत तीन चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। इन चिकित्सकों पर माओवादी कमांडर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करने और तथ्यों को छिपाने का आरोप है। पटना जिले के दीघा थानाध्यक्ष को एक जमीन के मामले में पक्षपात करने के आरोप में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने निलंबित कर दिया है। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार जहरीले पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है, बिहार में औद्योगिक समृद्धि आएगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की हड़ताल के बावजूद नहीं रुकेगा काम। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कार्य जारी रखने को वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। दैनिक भास्कर ने ईरान इसराइल युद्ध पर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय डाक बुकिंग बंद, हजारों लोगों का सामान फंसा, मधुपुर में उड़ान बाधित, इसलिए रोकी गई सेवा। प्रभात खबर लिखता है, नेपाल चुनाव में आरएससी को 182 सीट, बालेंद्र होंगे नए पीएम। राष्ट्रीय सागर और आज अखबार ने रसोई गैस और उसकी कालाबाजारी की रोकथाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई तेज। पटना और अररिया में 300 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर जब्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज सहरसा और खगड़िया जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।